जल्दी करो।
लगता है ये क्यों मुझे सदियों से चाहूं तुझे, लगता है ये क्यों मुझे सदियों से चाहूं तुझे, मेरे सपनों में आके अपना मुझको बना के, मेरे सपनों में आके अपना मुझको बना के, मुझ पे तू कर एहसान। हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना, मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी, तुझ में बसी है मेरी जान। हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900
پاکستان پیسے بھیجنا اب ہوا آسان یوز لیمفائی فار انٹرنیشنل ٹرانسفرز کینیڈا سے پاکستان پیسے منٹوں میں پہنچتے ہیں براہ راست جس کو آپ بھیجنا چاہیں بہترین ایکسچینج ریٹ اور پیسے پہنچے منٹوں میں ڈاؤن لوڈ فرام گوگل پلے اور ایپل اسٹور کوڈ پاکستان استعمال کرنے پہ آپ کو ملے $10 کا کیش بیک اپنے فون سے براہ راست بینک اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنا شروع کریں منٹوں میں اور بنا کسی فیس کے لیم فائی
سونا
ہوگی
اپنی کمیونٹی دا سب تو بڑا ودیا کوالٹی والا تے سب تو پرانا سوڈی فرنیچر ہر گھر دی پہچان بن چکی ہے
او پھر بنے بھی کیوں نہ کیونکہ بیڈ روم سیٹ سوفا سیٹ میٹریسز ڈائننگ ٹیبل ڈیکوریٹو آئٹمز گل کیجی سارے گھر دا فرنیچر ودیا کوالٹی تے ڈسکاؤنٹڈ پرائس تے مل جاندا سوڈی فرنیچر تو 3 سال لئی نو بیاج
142 کینیڈی روڈ برامپٹن 9058747171
Pakistani Veterans Canada presents Pakistan Veterans Day Musical Night with Shabnam Majid and Joji Ali Khan. Come and enjoy this event with full of live musical performances, delicious food with appetizers, great networking opportunities with a group of professionals. Saturday, 7th September, 6 p.m., Capital Banquet Center, 6435 Dixie Road, Mississauga. For tickets, 416-829-0908.
10 din ho gaye tenu sneha laaye nu par tu ignore hi kar reha hun phone ignore ho juga goliyan ignore nahi honiyan aap da te aap de parivar da dhyan rakhi phir na gayi pe dassya ni
Justin Trudeau di soft on crime policies di wajah nal extortion rise te hai liberals ne extortion te penalties vi kata dittiyan han is dauran Pierre Poilievre extortion de against bill leke aaye san ate Justin Trudeau te Jagmeet Singh ne is de khilaf vote kiti hun sirf common sense conservatives hi Canada da mahol theek kar sakde ne brought to you by Pierre Poilievre and Canada's conservative
ٹیم فور انٹرٹینمنٹ اتے ٹراس 99 لوجسٹکس پیش کر دینے پنجابی ورسا 2024 ٹورانٹو شو سیٹرڈے 7 ستمبر نو دا تھیٹر ایٹ گریٹ کینیڈین کسینو ریزورٹ ٹورانٹو Woodbine Mall ਅਤੇ Woodbine Race Track ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਿਸ ਕਮਲ ਹੀਰ ਅਤੇ ਸੰਤਾਰ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ticketmaster.ca ਤੇ ਜਾਓ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਟੀਮ ਫੋਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ 905-793-1234
इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियाँ और 1 घर है, और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा पाशा ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर की इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा पाशा 6472903773 6472903773।
साडे कोल योजना है जो कि ओंटारियो नु जोड़ रही है। रोजाना आवाजाही नु कटाउन लई नवीं सड़कां ते हाईवेज दा निर्माण अते वध रहे इलाकियां नु जोड़न लई पब्लिक ट्रांसिट दा विस्तार। यही सब इस लई तां जो तुसी तेजी नाल सुरक्षित अते आसानी नाल आउण जाण कर सको। ontario.ca/builds ते जाके होर जानो। इस दी अदायगी ओंटारियो सरकार वल्लों कीती गई है।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक लियो थ्रू आउट ओंटारियो। नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक लियो 519-622-0660 quicktruckloop.com।
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता। CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनी ग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन। अगर आप खुशियां बांटने जा रहे हैं तो $0 CIBC ट्रांसफर फी के साथ कैश पिकअप सर्विस के जरिए भेजें। CIBC.com/cashpickup पर जाएं। शर्तें और CIBC फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू। CIBC, एम्बिशंस मेड रियल।
ए संदेश जरा ध्यान नाल सुनो। गवर्नमेंट ग्रांट बच्चों अते परिवारों वास्ते उपलब्ध है। अगर तुहाडी इनकम $60,000 तो घट है ते तुहाडे बच्चे 12 साल तो घट उम्र दे हन तां तुहानू गवर्नमेंट तो $12,000 तो लैके $60,000 तक दी ग्रांट मिल सकदी है। ए पैसा तुहाडे अकाउंट विच 3 हफ्तियां दे अंदर अंदर आ सकदा है। ए गवर्नमेंट ग्रांट सर्विस ओंटारियो, अल्बर्टा अते BC विच उपलब्ध है। होर जानकारी लई शावेज दे नाल 647-769-0241
جی صاحب ناظرین ویلکم بیک اگین اینڈ سری صاحب ایک اور خوبصورت گیت کی طرف آپ کو لیے چلوں گا مگر اس گیت کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں کسی نے تعاون دیا ہوگا اور اس وقت کس نے تعاون دیا ہے تو یہ میں بتانا چلوں گا آپ کو کینم سولوشنز کی یاسمین طیبی اگر آپ نے اپنے بچوں بی بچوں کو یا دوستوں کو یاروں کو پاکستان سے یا دنیا بھر میں کہیں سے بلوانا ہو تو یاسمین طیبی کا نام یاد رکھے امیگریشن کا کام کرتی ہیں یہ 9055130012 ان کا فون نمبر ہے سب اونٹیریو کا لارجسٹ پاکستانی بفے جو ہے اس میں پارٹی رومز بھی ہیں ڈیلی ڈنر اینڈ لنچ بفے ہے کیٹرنگ سروسز ہیں نیو لوکیشن اب جو کھلی ہوئی ہے ان کی ایکسکیوز می 2294 لیک شور روڈ اوکویل کے اوپر ہے اور اس سے پہلی والی لوکیشن جو ہے 4141 ڈکسی روڈ مسیساگا میں ویلیج ٹیسٹ ان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیے آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے گی www.villagetaste.ca 9052323663 ان کا فون نمبر ہے انہیں کے تعاون سے ناب علی ظفر اینڈ فاطمہ کی آواز میں عروج فاطمہ کی آواز میں اس وقت میں یہ بہت خوبصورت ہے
جی
अब मॉर्गेज की परेशानी हुई खत्म कीस्टोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ। कमर्शियल मॉर्गेज, रेजिडेंशियल मॉर्गेज, प्राइवेट मॉर्गेज, कंस्ट्रक्शन मॉर्गेज, रीफाइनेंस, रिन्यूअल, सेल्फ एम्प्लॉयड और सेकंड मॉर्गेज, ऑल योर मॉर्गेज सॉल्यूशंस। कीस्टोन फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जैस्मीन परमार से आज ही कॉन्टेक्ट कीजिए। इनके पास है मॉर्गेज इंडस्ट्री में सालों का तजर्बा और आपकी मॉर्गेज का आसान हल। जैस्मीन परमार मॉर्गेज ब्रोकर। कॉल टुडे 6479235659 6479235659। स्पीक योर लैंग्वेज इंग्लिश, पंजाबी एंड हिंदी। लाइसेंस नंबर 13654।
हलाल मीट ते सब्जियां नाले फल भी ताजा मिलदे इत्थे मछली अंडे दूध दही ते सस्ते चावल मिलदे भल्ले पकौड़ियां ताजा मिठाइयां गर्म समोसे मिलदे बटाला सुपर मार्केट
स्कारपोरो दी वाहिद ते मिसाली सुपर मार्केट बटाला सुपर मार्केट 200 मार्कम रोड स्कारपोरो मार्कम रोड ते इंग्लैंडन दा संगम फोन 416-264-3111
कर्ज से निजात के लिए एक ही नाम मोहम्मद सिद्दी ऑल द सॉल्यूशन पुरसकून जिंदगी और क्रेडिटर्स की कॉल से छुटकारा
मोहम्मद सिद्दीक ऑल डेट सॉल्यूशन बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी कंसोलिडेशन करते हैं अप टू 80% मोहम्मद सिद्दीक आपके लिए काम करते हैं पुरसकून जिंदगी अच्छी सेहत और लंबी उम्र की जामिन अपनी जिंदगी को पुरसकून करने के लिए कर्जों से पाक करने के लिए राबिता कीजिए मोहम्मद सिद्दीक 416-671-0577
प्रोग्राम एक सबसे खुश आमदेद करना चाहती हूँ। मुझे बहुत से लोगों ने कॉल किया कि आप कॉल्स लेना शुरू करें। बहुत शुक्रिया 8865 भाई साहब, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर यू कॉल, यू जस्ट गिव मी अ कॉल। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि जिसके बारे में जो कहें हर इंसान अपने लिए, मैं अपनी क्लैरिफिकेशन जरूर दे सकती हूँ। आई एम नॉट हियर टू क्लैरिफाई फॉर अदर्स। ओ भाईजान, मेरे सेल फोन दे उते नहीं, स्टूडियो दा नंबर तानू भेजे, उदे उते कॉल करो, ठीक है? स्टूडियो के नंबर पे कॉल करें ताकि मैं आपकी कॉल ले सकूं। गिव मी अ कॉल इन द स्टूडियो नंबर। स्टूडियो का नंबर है 416-620-1778। आमिर टेलीविजन पे अगर लिखा हुआ आ जाए तो बहुत अच्छा। 416-620-1778। We are ready to take your calls. Of course, आज की तीन concerns थे। पहला concerns था कि जस्टिस जहांगीरी जो हैं, उनकी उनको disqualify किया गया था उनकी डिग्री को। मतलब मेरा ख्याल है आपको मैं लाइव प्रोग्राम करती हुई नजर आ रही हूँ, तो आप रिक्वेस्ट मेरी आपसे है कि मेरे सेल पे मत कॉल करें, प्लीज कॉल इन द ऑफिस। वो स्टूडियो का फोन है, उस पे कॉल करें, और वो नंबर है 416-620-1778। उस नंबर पे कॉल करें। आप ही लोगों के कहे के ऊपर मैं
दो मिनट का मैं टाइम दीजिएगा, क्योंकि हमारे साथ शिराज शफीक अकाल।
यार माजिद भाई, जब मेरा टेम्पो बनता है तो आप मुझे लेके नीचे बैठ जाते हैं। चले ठीक,
शिराज शफीक हमारे साथ हैं। और शिराज शफीक, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप?
हाँ, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है माजिद भाई?
ठीक
है। आप कौन सा?
आप सर एक सेकंड होल्ड करें, आप एक सेकंड होल्ड करें, दो कॉल्स मिल गई हैं। मैं शिराज से, आप होल्ड कीजिएगा, शिराज से फीक से बात कर लेने।
शिराज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप?
जी वालेकुम अस्सलाम माजिद भाई, अल्लाह ताला का शुक्र है आप सब ठीक
है अल्हम्दुलिल्लाह। शिराज शफीक को अकाल मॉर्गेजेस के बारे में कुछ बता दें सर।
मजिद भाई, बेसिकली हम लोग कॉल मॉर्गेज वाले जो है वो पिछले 20-22 साल से मॉर्गेज इंडस्ट्री के अंदर हम लोग सॉल्यूशन बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी भी किस्म की सिचुएशन हो, कॉल मॉर्गेज अपने नाम और काम दोनों के जानी जाती है। आपको किसी भी किस्म की मॉर्गेज चाहिए, चाहे आप कोई रेजिडेंशियल मॉर्गेज देख रहे हैं या कोई कमर्शियल मॉर्गेज देख रहे हैं, या किसी भी किस्म की कोई लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए, होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए, या आपका कोई प्लान बन रहा है जी, आप कोई फ्रेंचाइज बाय करना चाह रहे हैं उसके लिए बिजनेस लोन चाहिए, या कोई ट्रकिंग का एग्रीमेंट बाय करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ट्रकिंग लोन चाहिए, तो सब चीजों के लिए आप ऐसा प्राप्त कर सकते हैं जी। नंबर नोट कर लें, शिराज शेट्टी का लोन मुझे 416-502-8000।
शिराज, आज किस टॉपिक पे बात करेंगे आप?
आज मैं बात करना चाहूंगा मॉर्गेज रिन्यूअल विद बी लेंडर्स। वो बहन भाई जो कि स्टक हुए हुए हैं बी लेंडर्स के ऊपर और उनकी रिन्यूअल वगैरह आ रही है, मैं उनको बात करना चाहूंगा। देखिए आज भाई होता पता है कि जो बी लेंडर्स हैं वक्ती तौर पे हम अपने बहन भाइयों की सिचुएशन को देखते हुए उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, उनको मॉर्गेज लिख के देते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज उनको लेके देते हैं बी लेंडर से उनकी सिचुएशन के हिसाब से। बी लेंडर बेसिकली जो होते हैं ना वो फ्लेक्सीबल होते हैं एज कम्पेयर टू ए लेंडर। वो सिचुएशन के हिसाब से अगर आपने कोई वास्तव कंज्यूमर प्रपोजल की हुई है या आपको कोई क्रेडिट स्कोर कम है या फिर आपका कोई इनकम की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे ए लेंडर के ऊपर, तो हम लोग आपकी सिचुएशन को देखते हुए बी लेंडर से आपकी मॉर्गेज लिख के देते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब इनकी रिन्यूअल आती है ना तो जितनी एफर्ट हमारे बहन भाई कर रहे होते हैं मॉर्गेज लेने के लिए, इतनी एफर्ट वो रिन्यूअल के टाइम पे नहीं करते। वो क्या करते हैं जी कि जो रिन्यूअल के पेपर आते हैं उन्हीं को साइन करके भेज देते हैं वापिस, या फिर वो खुद ही लेंडर को कॉल करना शुरू कर देते हैं। ये इतनी अच्छी बात नहीं है, इसमें वजह डालता हूँ। देखो जब हम लोगों ने आपको बी लेंडर से मॉर्गेज लिख के दी थी ना वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से थी, ठीक है। अगर आप उसी को रिन्यू करते जाओगे बार बार तो आपके सारे जो पैसे हैं वो जाएंगे इंटरेस्ट के अंदर। बी लेंडर का जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई।
शिराज हमारे साथ
जी, 10% उनके पास पड़ा होता है और 10% जो है उन्होंने प्राइवेट लेंडर से उठाया होता है 20 करके, फिर भी वो मॉर्गेज बी लेंडर से ली होती है। बहुत सारे केसेस के अंदर हम इन दोनों मॉर्गेजों को कंसोलिडेट करके एक मॉर्गेज भी कर सकते हैं, और अगर फर्दर हमारे बहन भाई क्वालिफाई करते हैं तो उनकी इस मॉर्गेज को उठा के हम लोग ए लेंडर पे भी लेके जा सकते हैं। हमने बहुत सारे केसेस में ये करके दिया है, आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हो इंटरेस्ट रेट की शक्ल में। अगर किसी भी वजह से आपको मूव करने का फायदा नहीं ना होता तो हम लोग खुद ही आपसे कहते हैं कि जी आप इसी लेंडर पे रहें, तो हम कोशिश करते हैं इसी लेंडर से आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट लेके देने की। ये नहीं करेंगे कि आपको फोर्स करके किसी दूसरे लेंडर के पास लेके चले जाएं और वहां पे भी वही सिचुएशन हो आपकी। क्योंकि माजी से हमारे पास 90 लेंडर्स की बकेट मौजूद होती है, हम इस 90 लेंडर्स की बकेट के अंदर से जो अच्छी प्रोडक्ट होती है ना उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं अपने बहन भाइयों के लिए जिसका उनको फायदा होता है। अगर उनको फायदा नहीं होगा तो वो दोबारा कभी भी हमारे पास नहीं आएंगे। हमारी ये कोशिश होती है कि हम अपने बहन भाई के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बना के चलें, ठीक है। मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों की कोई रिन्यूअल आ रही है या कोई ऐसा कोई आपको मॉर्गेज का बन रहा है कॉल करें और अपनी ऑप्शंस को डिस्कस करें। हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है गाइड करते हैं, गाइड करने का किसी तरह का कोई चार्ज नहीं चार्ज करते हैं लोग, ठीक है। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल कर सकते हैं जी, नंबर नोट कर लें, शहराज शफी का कॉल मॉर्गेज
416-502-8000। शिराज शफीक का फोन नंबर है, कॉल मॉर्गेजेस से ताल्लुक रखते हैं। कोई भी सवाल हो मॉर्गेजेस का तो प्लीज गिव अ कॉल 416-502-8000। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।
जी माजिद भाई, और याद रखिए कि अगर हम लोगों ने आपकी फाइल को रिव्यू करके एक बार ओके कह दिया तो हम हमेशा अपने वादे पे पूरा करते हैं।
बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया आपका। और जी साहब,
जब इस वक्त अब हम आपकी कॉल्स लेने के लिए तैयार हैं। वैसे कॉल्स 416-620-1778-620-1778। तीन कंसर्न्स थे, एक तो जो जज हैं जिनकी डिग्री के लिए उनको डिस्क्वालिफाई करना चाहा, जिसमें कराची यूनिवर्सिटी के तमाम आला तरीन सिंडिकेट्स ने मिलने के बाद फैसला किया, मगर एक बंदा जो शायद काबू में नहीं आ रहा था उसको अगवा कर लिया गया। फैसला जब उनको डिस्क्वालीफाई उनकी डिग्री के लिए कर दिया गया तो रजा साहब को छोड़ दिया गया। आज सिंध हाई कोर्ट का फैसला है, एक तो ये मामला है। दूसरा मामला हमारा जो आज का है वो अख्तर मैंगल साहब ने ये कहा है कि अब हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, अब जाइए पहाड़ों के ऊपर जाके मुलाकात कीजिएगा। तीसरा जनाब हमारे जो मौलाना साहब हैं फजल रहमान साहब, वो तीनों तरफ मुलाकात कर रहे हैं, ऊंट किस करवट बैठेगा। चौथा ISPR की आज की कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात कर रहे हैं। आप लोगों के जो कंसर्न्स हैं आप अपना कंसर्न एड्रेस कीजिएगा। वो कौन सा हाइड पार्क है जहां पे यू जस्ट स्पिट इट आउट, बट प्लीज अल्फाज का चुनाव बेहतर रखिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
आपका नाम?
मेरा नाम सलमान है
जी। सलमान
मैं पाकिस्तान की निस्बत से कुछ हल्का सा लेकर आना चाह रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, शायद बोल दूँ मैं सही। देखिए, आपने जो है ना, चार हमारे सूबे हैं, चारों का निजाम सबको पता है। सिंध में वडेरा सिस्टम और सरदारी निजाम, वो सरहद और बलूचिस्तान से ताल्लुक। पंजाब में चौधरी निजाम, चौधरी पंचायतें जो बैठती हैं। कभी भी आपके मुंह से इत्तेफाक है कि कभी भी चौधरी का लफ्ज नहीं निकला, एक तो ये। और एक दूसरा आपके में ये लेकर आना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान का हशर नशर जो किया है, सिर्फ और सिर्फ फौज ने किया है। इसमें सब सबऑर्डिनेट है सिविलियन गवर्नमेंट, ये यही बनाते हैं, यही बिगाड़ते हैं। और सारे हेडक्वार्टर पंजाब में है। बच्चे बच्चे को पता है, जो कम फहम रखता है वो भी जानता है। और दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी मेजोरिटी मुल्क के खिलाफ थी 1971। यही वजह है 16 दिसंबर 1971 में मुल्क टूट गया, उसका नाम चेंज हो गया, बांग्लादेश बन गया, उसकी करेंसी का नाम भी टक्का हो गया। तो आप प्लीज जरा कराची या महाजीर की निस्बत से जब कोई बात आए, जरा मोहतात और लफ्जों का चुनाव एहतियात से कीजिए। आप मैं भी सुनता हूँ आपका प्रोग्राम, काफी अच्छा है, आप इंफॉर्मेशन बहुत देती हैं मुख्तलिफ जगह से। तो बस इसी सिलसिले में थोड़ा सा बस आपको आगाह करना था।
बहुत शुक्रिया। तो
अल्फाजों का चुनाव प्लीज
बहुत शुक्रिया
देखकर, और लव महाजीर का भी लव यूज किया करें।
मैं बिल्कुल, आप अपना नाम बता देंगे मुझे?
मैंने नाम अभी बताया आपको।
अच्छा, माफी की ख्वास्तकार हूँ अगर मैं तवज्जो नहीं दे पाई। बिल्कुल आपने सही कहा कि मैंने गो के आज तक चौधरी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, मगर पंजाब में भी ना वडेरा कहा जाता है। मुझे नहीं पता ज्यादा, मगर मेरा ख्याल है पंजाब में चौधरी को भी वडेरा ही कहा जाता है, क्योंकि चौधरी तो हर आदमी ने अपने नाम के साथ लगाया हुआ है। खासतौर पे जो अराइन फैमिलीज हैं वो चौधरी लगा लेती हैं, मगर पंजाब में भी वडेरा ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अब वडेरों में आप शाह मखदूम उनका जिक्र ले आए, वडेरा ही कहा जाता है। यस, मैंने कभी महाजुर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, पहली बात।
अब आपके
मगर
मैं आप माजरत चाहता हूँ, बात में बीच में बोल रहा हूँ मैं, माजरत किसका। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि चार सूबे हैं, चारों का जो हशर नशर किया है सिवाय पंजाब के, बाकी तीन को अलग रखने और पंजाब को अलग। तो ये जितनी तीनों गवर्नमेंट बनती है ना, तीनों सूबे में, सरहद, बलूचिस्तान, सिंध में, ये सब सबऑर्डिनेट हैं। और 40 साल से कमोबेश फेडरल गवर्नमेंट बदल रही है एक मियां साहब के खानदान में और भुट्टो खानदान।
वेरी इंटरेस्टिंग कॉल, यू आर अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉल। अब आप मेरे साथ रहिएगा, मुझे देखिए होता ये, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं दो तीन बातें आपसे क्लियर करके हम करें। मैं आई रिस्पेक्ट यू, आपकी कॉल सबसे पहली कॉल है, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं। मैंने पंजाब के लिहाज से बात की। नंबर दो, वडेरा के लिहाज से जब मैं पंजाब का जिक्र करती हूँ, वडेरा आपने मेरा अक्सर प्रोग्राम सुना होगा, मैंने हमेशा ये कहा सिंध सॉरी बलूचिस्तान, मैंने सिंध का जिक्र नहीं किया, मैं बलूचिस्तान और केपी का जब जिक्र करती हूँ तो ये वो लोग हैं जो जिन्होंने इवन जब बाहर से भी हमला आवर आया करते होते थे, 15वीं 16वीं सदी की अगर आप बात कर लें, 17वीं सदी की आप बात कर लें, तो इन्होंने उनको भी टफ टाइम दिया था। मगर मैंने हमेशा ये लफ्ज कहा, मत समझिएगा मैं खुद पंजाब से हूं तो मैं पंजाब को प्रोटेक्ट करती हूं। आई फील सैड, और मैं ये लफ्ज ये कहती हूं कि हम पंजाब वालों ने तो रास्ता दिया, भाई तुम भी खाओ, हमको भी खिलाओ और गुजर जाओ, ठीक है। उसके बाद अगला जो मार्का पड़ा था वो आगे प्लासी की जंग के ऊपर पड़ा था। तीसरी बात जो मैं आपके साथ करना चाहती हूँ, मैंने ये वली खान साहब ने भी ये लफ्ज कहा था कि जब पंजाब के सर पे पड़ेगी, और आज मेरा ये क्वेश्चन था और उस फैमिली के लिहाज से ये क्वेश्चन था जिनसे कल मेरा राबता हुआ। वी आर गोइंग टू डू अ कम्प्लीट प्रोग्राम ऑन दैट कि FIR नहीं दर्ज करवा पा रहे थे, अल्टीमेटली FIR दर्ज कराई तो कितनी मुश्किल से वेरी एस्टेब्लिश्ड फैमिली पाकिस्तान को छोड़ के चले गए, ठीक है। मैंने ये लफ्ज कहा कि इससे पहले लोग गुमा करते होते थे, परवेज मुशर्रफ के जमाने से ही मैंने तो सुनना शुरू किया, उससे पहले की कहानी का तो मुझे नहीं पता। بلوچستان سے لوگ گم ہوا کرتے ہوتے تھے. بلوچستان کے نوجوان لوگ سڑکوں پہ نکلے بھی ہیں جن کا باپ آج تک گھر نہیں لوٹا, بیٹا نہیں لوٹا. مگر پنجاب کے اوپر اب پہلی بار بیتی ہے.
سندھ نے اردو اسپیکنگ کے نہ صرف بلکہ قبرستان بن گئے بلوچستان میں. F-16 ہم نے جو بائی کیے تھے نا, اس کا استعمال باجوڑ ایجنسی, خرم ایجنسی, یہ جو 12 ایجنسیاں ہیں نا ہماری, اس میں استعمال ہوا ہے. حقیقت میں جتنے بھی جو فوجی جوان جو مرتے ہیں نا, وہ سب کے سب پنجاب میں جاتے ہیں. تو کیا یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ یہ پنجابی فوج ہے؟ اگر پاکستان کی ہوتی تو دوسرے علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں. جیسے سندھ ریجیمنٹ, اس میں 1% بھی سندھی نہیں ہے. بلوچ ریجیمنٹ, بلوچی 0 ہے نا, کے پی ای اور وہ اس میں جو ایف آر سی ہے, اس میں کوئی سا بھی نام لے لیں, سب کے ہیڈ کوارٹر پنجاب میں, نوٹ پنجاب میں چھپرا ہے, میجورٹی پنجاب کی. اور جبکہ اردو کا سہارا جو آدمی تعلیم لے کر آیا ہندوستان سے, تہذیب و تمدن لے کر آیا, دوات اور قلم لے کر آیا, اس کا آپ نے تمسخر بنایا اور تماشا بنا دیا پاکستان میں. پاکستان میں تماشا. اب آپ کے ایک علم میں, دنیا کے جتنے بھی نیشنل لینگویج ہے نا ممالک جو رکھتے ہیں, ان کے نیشنل اینتھم ان کی نیشنل لینگویج میں ہوتے ہیں. پاکستان کا نیشنل
پرشین
میں ہے نا, انگلش آفیشیل لینگویج. اور پنجابی میں ایک بھی لفظ نہیں, نہ کتاب, نہ ان کے الفاظ, نہ الفابیٹ, وہ سارا اردو کا لے رہا ہے. جبکہ پنجابی کا الفابیٹ ہے, سکھ یوز کرتے ہیں.
اچھا, ہم نے یہاں پہ ہاں اسی اب آگے بہت شکریہ, یہ انٹریکٹو پروگرام ہے.
سوری اگر
نہیں, مجھے آپ کی کوئی بات بری نہیں لگی. وی آر گوئنگ ٹو, میں آپ کی کال کو سر آنکھوں کے اوپر لیا, اینڈ وی لک فارورڈ فار ادر کالس. مجھے آج بار بار باہر میں جب بیٹھی ہوئی تھی, آئی بلیو آئی گاٹ آلموسٹ 10 کالس کہ آپ کالس کیوں نہیں ہماری لیتی. آئی سیڈ اوکے آئی ول اوپن. صرف آپ نے بڑے پیارے طریقے سے, اچھا ابھی آپ نے بات کی نا, تو ایم کیو ایم کے لحاظ سے میرا خیال ہے کہ ہم نے 2-3 بار پروگرام کیا. میں نے لفظ مہاجر کبھی استعمال نہیں کیا, مگر ایم کیو ایم کا لفظ میں نے استعمال کیا. میں بلکہ کوشش بھی کر رہی تھی کہ جناب الطاف صاحب سے میرا انٹرویو ہو جائے, مگر اس سے ایک جگہ سے اپروو ہونا ہے, وہاں سے اپروو ہونے کے بعد مجھے پتا چلے گا. میں اب یہ کہتی ہوں کہ بھائی عمران خان نے تو آج یہ بات کہی, جناب الطاف حسین صاحب نے تو بہت عرصہ پہلے یہی کچھ ہی کہہ دیا تھا جو کچھ عمران خان صاحب نے کہا.
نہ صرف الطاف حسین نے, ولی خان, غفار خان, Exactly. سارے لیڈروں نے
یہی بات کہی. مگر اب ایک بات کا جواب آپ بھی مجھے دیں, ایک بات کا جواب آپ بھی مجھے دیں. چاہے وہ جماعت اسلامی ہے, میں جماعت اسلامی سے شروع کرتی ہوں, چاہے وہ جماعت اسلامی ہے, چاہے وہ ایم کیو ایم ہے, چاہے وہ مینگل گروپ کی بات کر لیں, بلوچستان کی کسی پارٹی کی بات کر لیں, چاہے اچکزئی, محمود اچکزئی کی پارٹی کی بات کر لیں, کیا بات ہے کہ یہ پارٹیاں ہمیشہ پلڑے برابر کرتی ہیں, یعنی وزن کو ایکول کرنے میں یا وزن کو کم کرنے یا زیادہ کرنے میں استعمال ہوتی ہیں, جس کا اظہار سردار مینگل نے خود کیا ہے کہ ہماری غلطی تھی کہ ہم اچھے بھلے یہ جماعت اسلامی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ تھی, اچھی بھلی آپ کی جو ایم کیو ایم ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ تھی, اچھی بھلی یہ مینگل گروپ پر یہ سارے اچکزئی یہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے ساتھ تھے. جب رجیم چینج آیا تو یہ سارے کے سارے اس پلڑے میں سے اٹھے اور اس پلڑے میں جا کے بیٹھ گئے.
اچھا, یہ اس پلڑے سے اٹھ کے اس پلڑے میں جو گائے اس کی وجہ اور ریزن بیک اپ ہے کہ یہ لوگوں کو جتنا بھی جو سب آرڈیننٹ ہیں, یہ دراصل ماتحت ہیں اس کے نیچے آرمی کے. آپ اندازہ لگائیں ملک میں نظام دھرم برہم صرف ایک وجہ سے ہوا ہے میرے خیال کے مطابق, کہ معاشی نظام جو اقتصادیت کا انتظام ہے نا, جو چیزیں لوگ بیچتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, جیسے بینکنگ سسٹم, اسکول کا سسٹم, کھاتے بیچنے, کھاد جو ہوتی ہے یہ نفرت, اور کیا نام ہے, اسکول چلانا, بینک چلانا, اور یہ کیا نام ہے آپ کا, نبات آتی ہے جو بیچتے ہیں, درخت پودے لوگ ہیں نا, یہ سارے کام جب فوج کرے گی اور مکان بھی بنائے گی تو سب بے روزگاری ملک میں پھیل جائے گی جس طرح سے پھیلی ہوئی ہے 50 سال سے.
نہیں نہیں, آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا. آپ نے جواب نہیں دیا کہ یہ لوگ, یہ چار کے چار پانچ بڑی پارٹیاں اچھی بھلی ایک جگہ چل رہی تھیں, تو آپ کا عام عوام, تو آپ کو جنہوں نے ووٹ دیا وہ تو پس رہا ہے, مگر جو آپ کا لیڈر ہے وہ کبھی وزن بڑھانے کے لیے ایک پلڑے میں, आज तक उनको क्यों नजरिया जरूरत उन्होंने महसूस नहीं किया कि हमने आर्मी को फॉलो नहीं करना, या वो जो हमें खरीद के कभी एक पलड़े में बिठा देते हैं।
पाकिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ, कराची से ताल्लुक है, वहाँ पर सब बच्चे आंखों से देख चुके हैं, उधर कब्रिस्तान बन चुके हैं 50 साल 40 साल में जो फौज ऑपरेशन कर रही है। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, बलूचिस्तान सिंध अगर इनको खुलेआम छोड़ दिया जाए ना आवाम को, एक बात हल्की सी कहकर खत्म करता हूँ, जिस मुल्क में फौज मौजूद हो ये इस बात की दलील है कि वहां के लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कानून और लॉ को, जैसे कराची, यरूशलम और कश्मीर, ये तीनों शहरों में 60 साल से फौज मौजूद है, क्योंकि ये दूसरी जगह से आई हुई है, इलाकाई लोगों को दबा रही है। अगर फौज ना हो पाकिस्तान कराची के अंदर तो ये इसका सबूत है कि वहां पर अमनो अमान है, बस यही बोलना था
आपको।
और कभी ऐसा हुआ है कि एक ही सूबे ने सारी चीजें कंट्रोल में ले ली हो? यहाँ पर 11 सूबे हैं, आप 25 साल से रह रहे हैं,
आप मुझे
52 सूबे हैं बराबर में स्टेट बैठी है 52, कोई सूबा एक नहीं लेता है, कोई इमिग्रेशन ले रहा है, कोई रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, कोई इमिग्रेशन पॉलिसियां बना रहा है। अब पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब करेंगे तो उनमें इश्तियाल पैदा होगा दूसरी कौम में, उनमें कुछ वो यानी कि बगावत के उनसर उभरेंगे अंदर से।
मैं एग्री
करता हूं। और ये पंजाब और बेचारे जो पंजाबी हैं, जैसे आप या मैं, हम सेम फैमिली वाले हैं, तो आपको खमियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है, जैसे पंजाब में भुगतना, बांग्लादेश में, ढाका में। अब देखें आपने बिहारियों को जो है ना वहां पर उर्दू स्पीकिंग वाले हैं, उन्होंने इतना फौज का साथ दिया तो उनको तो फौज ने छोड़ दिया, 1-2 लाख तो बर्मा से होते हुए भागकर इधर आ गए, और 1.5 लाख के करीब ये आर्मी ले गई है। सूरह इजरात पढ़े उसमें लफ्जी तर्जुमा है, हम तो आपकी जमीन सुकड़ देंगे अगर मखलूक के ऊपर रहम नहीं किया। और किसकी जमीन सुकड़ी? देखो इनकी वजह से हम भी परेशान है, महाजिर भी परेशान है, ये पापीट है, ये सिंध के अंदर जो बिठाए हुए हैं, बलोच में बिठाए हुए, फौज किससे? आपकी डील सही हो गई? हो गई। अभी अल्ताफ भाई की डील सही हो जाए, अभी पूरा कंट्रोल है,
मगर अल्ताफ भाई की डील अल्लाह करे सही हो जाए, मगर अल्ताफ भाई फिर यही तो एक गम की बात है कि जब ऑपोजिशन में होते हैं तो हम उनको गालियां देते हैं,
चाहे वो
नवाज शरीफ है, चाहे वो जरदारी साहब है, चाहे वो पीटीआई है, जब ऑपोजिशन में है तो उनको गालियां देते हैं, और जब पोजीशन मिल जाती है तो इकतदार
उनकी आंखों के सामने। आप समझी नहीं, हकीकत में मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये जितने भी लोग हैं ना, देखें भुट्टो खानदान के कई लोग मरे हैं, इमरान खान कर परसों आया है अभी सियासत में, वो उसका तस्करा नहीं होगा, फिर प्राइम मिनिस्टर बना था उसका कान पकड़ के हटा दिया, सही पॉलिसियां नाफिज करना चाह रहा था वो, तो जिसने कान पकड़ा इसको पकड़ा जाए, जीएचक्यू को ऑपरेट कर रहा है वाशिंगटन, और ये जो है ना आपका इसराइल के अंदर जो उम्मत मोहम्मदीय के ऊपर कहर ढाया हुआ है, 17 इस्लामी रियासतें अरब जो है उनके ऊपर बनाया है अमरीका और बरतानिया ने, इसराइल उस साइड पे और इधर बनाया था पाकिस्तान, ताकि इनकी नकेले हाथ में रखें। कभी आपको पता है ये रेड जोन, ग्रे जोन और क्या नाम है ये व्हाइट थ्री जोनों में जो तकसीम हुआ है, ये किसने करा, इसकी क्या हिस्ट्री है? ये बरतानिया ने करा था, और बरतानिया लोकल नहीं थे वहां के, ये दूसरे मुल्क से आए थे, कॉलोनी थी पूरा सब कॉन्टिनेंट। हाँ, और स्टिल अभी तक रखा हुआ है इन्होंने फौजियों ने, ग्रे जोन, ग्रीन जोन, रेड जोन, ये दरअसल अपनी प्रोटेक्ट के लिए करा हुआ इन लोगों ने।
बहुत
अच्छा, इंडिया में नहीं है, इंडिया में नहीं है, इंडिया तो पनप गया। हाँ, इंडिया तो एक दुनिया की सुपर पावरों में 5वीं 6वें नंबर पे आ रहा है हर रैंकिंग में, फाइनेंशियली देखें या इकोनॉमिक दूसरे साइड से।
सही, हमारे मशवरा देने वाले गलत हैं। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मैंने अभी आपने कहा ना कि कराची का जिक्र किया, अभी पंजाब में वो 1-6 मशक्शुदा लाशें एक और भी मिली हैं, वो पंजाब से मिली हैं। ये अभी आमिर को मैंने पिक्चर भेजी है। मैं आज जनाब इम्तियाज गुल के साथ जब प्रोग्राम था, पाकिस्तान के टेलीविजन ने बाकायदा, इट्स अ वेरी स्ट्रांग फैमिली बिजनेस कम्युनिटी जिनकी, जो कि जब टैक्स पे किया जाता है तो टैक्स पे करने वालों में तीसरे या पांचवें नंबर के ऊपर ये फैमिली आती है, एंड दे आर वेरी नोन पीपल, वेरी नोन पीपल। इनके खानदान में से जब पहला एक शख्स अपने बीवी और बच्चों को छोड़ लेके आज से 7-8 साल पहले कनाडा में आया था, तो बाकी सारी की सारी फैमिली ने इसको डिसलाइक किया था कि तुम कारोबार करते हो, अपना मुल्क है, अपना सब कुछ है, क्यों पाकिस्तान छोड़ के गए। ये नेक्स्ट कोला के नाम से इनकी एक प्रोडक्ट थी, पांचों कॉल्स हैं, ये सुन लीजिएगा। ये देखिए, ये कोला नेक्स्ट कोला के मालिक जुल्फिकार अहमद, उनको जनाब ये अपनी बीएमडब्ल्यू में जा रहे थे, साथ इनका एक दोस्त बैठा हुआ था, पीछे इनके दो मुहाफिज थे क्योंकि ये लोग गार्ड्स के साथ चलते हैं। एक चार गाड़ियां आई जिसमें एक की नंबर प्लेट थी और तीन गाड़ियों और या चार गाड़ियों की नंबर प्लेट नहीं थी। हमने पूरा प्रोग्राम मैं इस पे करूंगी जिसमें मैं आपको एफआईआर के बारे में भी बताऊंगी। लो जी, उस बंदे को इसमें से निकाला, दोनों दोस्तों को, ये जो कोला नेक्स के मालिक अहमद साहब हैं, जुल्फिकार अहमद, इनको भी और इनके दोस्त को भी उन्होंने अपने डाले में डाला, लेके चले गए। आगे जाके पता चला, अच्छा इस आदमी के, शरीफ आदमी आप देखिएगा, इसकी आंखों पे उन्होंने पट्टी बांध दी। और रिकॉर्ड के बीच में देखें कि ये कंपनी टैक्स कितना पे करती है, आप तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। हम अगला जो प्रोग्राम करेंगे वो ये तमाम चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। इसके दोस्त को वहां से उतार दिया, ये आदमी छह दिन गायब रहा, सारे के सारे ये दे आर वेरी स्ट्रांग बिजनेस पीपल, दे हैव अ टेलीविजन स्टेशन भी, बड़ा स्ट्रांग टेलीविजन स्टेशन भी इनका वहां पे है, और वो सारे के सारे सिक्योरिटी इदारे इनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अल्टीमेटली जब तड़प शुरू हुई तो सारे के सारे आके इनके घर बैठ के उन्होंने कहा जी हम पता करते हैं। वो एक गार्ड ने तस्वीरें ले ली थी, उन्होंने कहा जी ये एक डाला था जिसके ऊपर नंबर प्लेट थी, जो चार या पांच और डाले थे, ये जो 4x4 टाइप की गाड़ियां होती हैं, डाले ही इनको कहा जाता है पाकिस्तान में, यहां पता नहीं क्या कहते हैं, ये जो सोडी की भी गाड़ी है, चार की नंबर प्लेट्स नहीं थी। अल्टीमेटली उन्होंने गाड़ी को उन्होंने रेकग्नाइज किया ना, अच्छा एवीसी, उनको कहा जी फिक्र नहीं करो, ताड़ा बंदा शाम तक कार आ जाएगा। खैर इन्होंने अपने घर फोन किया जो साहब, तो उन्होंने कहा नहीं जी हाले तक तो नहीं आया, अगर आया होता तो हम आपको सबसे पहले बताते, नहीं आया। शाम के वक्त ये बंदा आ गया, छह दिन माजिद भाई इस आदमी की आंखों पे पट्टी बांध के रखा। वो कहते मुझे सिर्फ टाइम का अंदाजा हुआ करता था अजान से, ठीक है कि फजर की अजान, दोपहर की अजान, तो मुझे सिर्फ टाइम अजान की आवाज सुन के टाइम का अंदाजा हुआ करता था। अब कोला नेक्स्ट की, और कहते हैं उसको मारते थे, सवाल उससे क्या पूछते थे कि तुम टैक्स पे करते हो, तुम्हारे पास ये पैसा कहां से आया? उसने कहा कि तुम लोग जाके टैक्स का रिकॉर्ड देख लो, हम तो टैक्स पे करते हैं, ये वाला वेरी नोन फैमिली, ठीक है। और क्या उनके बाकी कारों, उनकी शुगर मिल नहीं उनको नजर आ रही थी, उनको और बाकी चीजें नहीं नजर आ रही थी। अल्टीमेटली जी वो कोला नेक्स्ट के ओनर फ्लाइज, अब क्या हुआ है, ये पूरी की पूरी फैमिली, दे डोंट हैव वन बिजनेस, दे आर सेलिंग एंड दे आर जस्ट डिस्पोजिंग ऑफ ऑल देयर बिजनेस एंड दे आर लीविंग कैनेडा, दे आर लेफ्ट कैनेडा, द फैमिली हैज ऑलरेडी लेफ्ट पाकिस्तान, the family has already left the whole family and they have multiple, aap imagine kijiyega ki ek ye jo 2 3 4 businesses jab band honge to kitne logon ki naukriyan jayengi, aur ye bhi nahi ke bazookat hum foran shak ka shikar kar dete hain ki haan ji iske paas paisa hai, jinhone paisa kamaya hota hai unhone utne logon ko employment, aur agar aapke paas record hai, misal ke taur pe main har 4 mahine ke baad HST hum jama karate hain, aapke paas record hai, aap saal ke baad tax aata hai, aap apna tax pay karte hain, aapke paas record hai, aur Pakistan Revenue Canada ab 26% tax ki collection kam hui hai बिकॉज इस जैसे लोग निकल के जा रहे हैं, नुकसान किसका होगा, मुल्क के गरीब आदमियों का। और अभी जो कॉलर मेरे साथ थे, ये जो जिस बंदे को अरेस्ट किया, ही इज नॉट फ्रॉम सिंध और बलूचिस्तान, नाउ पंजाब इज पेइंग द प्राइस, पंजाब के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था। बाकी आपने ये कहा ना, तो मैं एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का जिक्र करती हूँ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो काकड़ थे, ही वॉज फ्रॉम बलूचिस्तान, ही वॉज फ्रॉम द बलोचिस्तान। मेरा तो आपसे कंसर्न ही ये है, चाहे वो जमात इस्लामी है, चाहे वो MQM है, चाहे वो कोई भी पार्टी, अब वो कौन था, वो नवाज शरीफ का जो खटक था, कितना करीब इमरान खान के, कितना करीब हुआ करते थे बिके, हालांकि पठान इतने आराम से बिकता नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो,
हेलो अस्सलाम वालेकुम,
वालेकुम सलाम, बात कीजिए
जी। सिस्टर जी मैं रियाज हुसैन बोल रहा हूं
जी, रियाज भाई।
सिस्टर जी जो भाई साहब ने बात की है ना,
वो ये है कि जो पंजाब है उसमें दूध और शहद की नहरें बह रही, कभी देखी आपने?
नहीं नहीं, उनका कंसर्न दूध और शहर की नहरों का ही नहीं, उनका कंसर्न है कि वजारत उज़्मा, हालांकि बेनजीर भुट्टो साहबा तो सिंध से थी, बेनजीर भुट्टो जरदारी साहब तो सिंध से हैं, पंजाब से तो नहीं है।
जो मैंने अपनी पार्टी के कन्वेंशन में ये बात की थी, जो सिंध से आया वो कहता सिंधी मार रहे हैं, जो उधर से आया केपी से वो कह रहे हैं जी हम मार रहे हैं, बलोचिस्तान वाले कह रहे हम मार रहे हैं, हम बड़े जिंदा रह रहे हैं, हमें चौधरी मार रहे हैं, उनको खान साहब मार रहे हैं।
मगर मैं आपको तो बताऊँ, पंजाब में, मैं पंजाब से हूँ रियाज भाई, बड़ी माजरत के, पंजाब में कभी जबरी गुमशुदगियाँ नहीं हुई थी, ये दिस इज द फर्स्ट टाइम कि पंजाब में जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं।
जो पंजाब में हुआ ना वो आपने शहर गांव में जाके देखा नहीं, बंदों को उल्टा टांग के पीस मारती रही, उल्टा टांग, उनको नंगा करके छित्तर मारती रही। एक दफा मैं मुगलपुरा थाने में कुदरती, मेरा दोस्त था, मैं रात ठहर गया, रात 12 बजे किसी लड़के को आवारा गर्दी में पकड़ के लाए, उसका भाई आया सिर्फ पता करने के लिए कि मैं भाई का पता करने आया हूँ, उसको लिटा दिया, उसकी चीखे सुनी और मैं जाग गया, मैं उसके गट्टियों मार रहे हूँ। बस ये मैं आज की बात नहीं कर रहा, ये मैं 88 की बात कर रहा हूँ, 1988 की। मैं वो ला करने के लिए कराची गया था, कि मैं कराची में ला करने के लिए खुद गया था, तो वहां पे मैंने शेर पढ़ा, जले तो आग बुझे तो राख कहते हैं, जिस राख से बने बरूद उसे इल्ताफ कहते हैं। मैं भी महाजर हूँ, मुझे तो ये महाजर मानते नहीं है, मेरे माँ बाप जो है पंजाब से आए, पंजाब से वो वहां से हम महाजर हैं, हमको क्यों नहीं महाजर मानते? हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमारी आधी आबादी कट गई, आधी आबादी हमारी कट गई, जो रास्ते में काट दी गई, ट्रेनों की ट्रेनें, ये मेरे महाजर भाई गाड़ी में बैठ के सीधे कराची आके उतर गए, गुस्सा नहीं करना।
नहीं नहीं, उसमें मैं आपको तो बताऊँ, बाज़ुकत हमारे अल्फाज ऐसे होते हैं कि हम वी आर नॉट हियर टू ऑफेंड ईच अदर,
मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूँ। और सच्ची बात एक और बता दूं भाई साहब को, मेरे जितने पंजाब के शहर, मैं पंजाबी नहीं हूँ, मेरे जितने पंजाब के शहर हैं, छोटे से छोटा शहर, टाउन टाउन में महाजर बैठा है उर्दू स्पीकिंग, छोटे से छोटे, आप लाहौर पे चले जाए, माल्ट रोड पे देख ले जाके, हम जो मतलब है, मेरा कैसे तल्लक है, इसलिए मुझे पता है इस बात का, आम आदमी को नहीं पता। मेरे माँ बाप आए, मैंने कहा यार तुम शहर में क्यों नहीं बैठे, तुम क्यों गांव में आके घुस गए, मैं उनसे पूछा ये सवाल। आप बात करते हैं आपके असल ताकत की तरफ, ये महाजर का नहीं मसला, भाई साहब ने एक बात सच्ची की है जो मैं भी करता हूँ, वो मैं उसको कहता हूँ गुलाम माफिया, जिसने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया हुआ है, पूरे पाकिस्तान, वो महाजर हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, कोई भी हो, वो सब उस गुलाम माफिया के जुल्म और सितम का शिकार है।
मगर
भाई साहब ने कहा कि अंग्रेजों ने और अमेरिका वालों ने साजिश करके हुक्म किधर से जाता है, भाई साहब ने भी ये बात की, मेरी एक बात जो सच्ची बात है उस पर हम सबको टिकना चाहिए, इस हुक्म को खत्म करना है, आजादी, असल आजादी की बात करनी है। दूसरी बात रहेगी जस्टिस साहब की, वो सिस्टर जी दो तीन तरीके हैं, एक तो चलो जी उसकी सनद भी गलत, उसने गलत तरीके से ले ली, मान लिया, उसका 20 साल का तजर्बा है कोर्ट में बैठने का, और 20 साल जज साहब जो है वो फैसले करते रहे हैं, और 20 साल के तजर्बे के बाद वो शक्ति काबिल नहीं है कि वो जज बन सके।
नहीं नहीं नहीं, मगर मैं नहीं, मैं इस चीज को तो, मैं नहीं इस चीज को तो, मैं वो
मिस्टर जी मेरी बात को, वो उसके तजर्बे के बेस पे भी वो क्वालिफाई करता है, और मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि मेरा सबसे बड़ा बुजुर्ग मेरी जुडिशरी है, जुडिशरी को उसका साथ देना चाहिए, कोई गुलाम माफिया जुडिशरी के सामने खड़ा नहीं होता, ये पक्की बात है। लेकिन अगर अंदर से जज मिल जाए, मैंने तो मुगल बादशाहों को जुडिशरी के सामने खड़े होता नहीं देखा, जब जुडिशरी के जज बिक जाएंगे
تو پھر ملک میں کچھ نہیں ہو سکے گا. علی کا فرمان بھی دیکھ لو, چرچل کی بات بھی دیکھ
لو.
سب سے پہلے جو ہے وہ جوڈیشری ہے, جوڈیشری اپنے صحیح فیصلے کرے, کوئی مائی کا لال اس کے سامنے نہیں کھڑا.
بہت شکریہ.
باقی دو تین باتیں آپ کی رہ گئی, چونکہ وقت زیادہ
نہیں, آپ کوئکلی کور کر دیں.
تھینک یو سسٹر جی, بہت
شکریہ. جہاں تک رہا نا کہ یہ کینیڈا امریکہ میں یہ ہوا تھا کہ ایک شخص تھے, ایز میں اپنی ڈگریز پروو کی تھی, میں نے یہ کیس یہاں کور بھی اپنی سٹوری کور کی تھی کہ وہ ڈاکٹر تھا اور باقاعدہ ڈاکٹر سے اس نے اپنے آپ کو پروو کیا ہوا تھا, مگر رانگ از رانگ. ہاں یہاں پر یہ غلط تھا بیکاز وہ ناپسندیدہ شخص تھا, اس کو اس عہدے سے ہٹایا جانا تھا. 30 سال تک آپ کو پتا نہ چلا, 1991 سے لے کے آج تک آپ کو پتا نہ چلا. آج دکھ کی بات یہ ہے کہ جب وہ ایک گروپ آف دا جو کراچی یونیورسٹی کے ایلیٹس جو ایجوکیٹڈ لوگ تھے, سلیگیٹس تھے, وہ جب اکٹھے ہوتے ہیں, اس شخص کو صفائی کا موقع بھی نہیں دیا. ایک شخص جو کہ سچ کا ساتھ دے رہا تھا اس کو اغوا کر لیا گیا. الٹیمیٹلی سندھ کورٹ نے اپنا فیصلہ دے دیا, لیٹ سی کہ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. دوسری بات جو پہلے بھائی نے کال کیا تھا, آپ نے کہا پنجاب نے ہمیشہ حکومت کی. دیکھیے جی, میں آپ کو, آپ کی نالج زیادہ ہو سکتی ہے, مجھے تو کچھ عرصہ پہلے دھکا ملا سیاست میں, مگر نواز شریف پنجاب سے تھے. اگر چیف آف دا آرمی اسٹاف کی طرف سے ایوب خان صاحب آئے تھے تو وہ تھے خیبر پختونخوا سے. پرویز مشرف مہاجر گروپ سے ان کا تعلق تھا, سب سے زیادہ دور انہوں نے کیا. یس, ضیاء الحق پنجابی تھے, ارائی تھے, وہ پنجاب سے ان کا تعلق تھا. نواز شریف کا تعلق پنجاب سے تھا. آپ آگے آ جائیے گا, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ یا آصف زرداری صاحب کا تعلق سندھ کے ساتھ ہے. تو بعض اوقات ہم اپنی آنکھ کا چشمہ غلط لگا لیتے ہیں, جس میں پنجاب کی جو غلطیاں, میں تو خود اوپنلی کہتی ہوں کہ پنجاب نے ہمیشہ راستہ پرووائڈ کیا. میرے اپنے پنجابی بھائی بہنوں کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی, پنجاب نے راستہ فراہم کیا, پنجاب کو کسی کے دکھ کا احساس نہیں تھا. اب جب پنجاب کے لوگ ہیں تو اب دیکھیے نا کہ بڑی بڑی جو خاندان ہے نکل کے پاکستان کو جب چھوڑیں گے اور جو بے روزگاری پیدا ہوگی تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا. ایک اور کال ہے, اپنا نام بتائیے سر. السلام علیکم.
السلام علیکم
جی بھائی.
45 منٹ میرے ویسٹ ہو گئے.
ہائے میں مر جاؤں. ہاں جی,
میں نے پہلے کال ملائی تھی, وہ ایک بہت صاف آئے تھے.
مائی اپالوجیز,
کراچی کا کیس لے کر آئے ماشاء اللہ سے. لیکن میں ایک بات آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں, میرے بہت سارے بہن بھائیوں کو بھی کلیئر کر دینا چاہتا ہوں, یہ جو مہاجر کا لفظ صرف کراچی آئٹس نے اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے نا, ٹوٹلی رانگ.
پنجاب میں بہت مہاجر ہیں, بالکل صحیح.
ریزن, نو نو ریزن بینگ, پنجاب کا مہاجر اور کراچی کے مہاجر میں پتا کیا فرق ہے؟ پنجاب کا مہاجر ریئل ہجرت کر کے آیا تھا, فورسڈ ہجرت کر کے. ان کے گھروں کو آگ لگائی گئی تھی. میری ماں کی نئی نئی شادی ہوئی تھی, میرا نانا ڈاکٹر تھے, ہی ہیز اے لاٹس آف گولڈ جیولری ایوری تھنگ. انہوں نے کہا بھائی تم سب کنویں میں ڈالو اور کنویں میں پھینک دو اور اس کو کنویں کو بند کر دو, جس کے قسمت میں ہوگا مل جائے گا, صرف جان بچاؤ اور اناج جتنا لے سکتے ہو لے لو. وہ لے کے نکلے, میری مدر ان لا کی دو بہنیں ان میں راستے کے اندر دم توڑ گئیں. میری مدر ان لا کی ایک اور کزن کی دو بہنوں نے, دو کزنز نے کنویں میں چھلانگے مار کر اپنی خودکشی کی کہ
عزتوں کو بچایا,
حملہ ہو رہا تھا عزتیں بچانے کے لیے. اب آتے ہیں کراچی کے مہاجرین کی طرف. کراچی کے مہاجر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, پرویز مشرف کی, وہ کہتا ہے میں مہاجر ہوں. کس ایئر میں ہجرت کی؟ 52 میں. 52 میں کون سا, وہاں پہ جلاؤ گھیراؤ اور مار کٹائی ہو رہی تھی اور قتل عام ہو رہا تھا. جو آپ دے موسٹلی کیم فار دا بیٹر اپرچونیٹیز, کیونکہ گرو ہو رہا تھا اور لوگوں کی ضرورت تھی یہاں پہ, تو لوگ सब जो जितने लोग भी जितने अच्छा दूसरी बात यह कि जिसके पास थोड़ी बहुत एजुकेशन थी मैट्रिक एफए बीए जो भी उठा के आके भाई पाकिस्तान भागो इंडिया में तो हमारी कोई ग्रोथ ही नहीं होने लगी। पाकिस्तान आके आपको पता है अर्ली 70s अर्ली 80s अर्ली 60s में 90% जो ब्यूरोक्रेसी थी वो महाजरीन की थी बिकॉज दे वर मोस्ट ऑफ
एजुकेटेड।
हाँ अच्छा दूसरी बात वो कहते हैं हम एजुकेटेड लोग आए हैं। अरे भाई पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की कई सौ कितने सौ साल 150 साल पुरानी है उस वक्त कराची में कौन सी यूनिवर्सिटी थी या सिंध में कौन सी यूनिवर्सिटी थी सिवाय मदरसतुल इस्लाम के जहाँ कायद आजम ने तालीम हासिल की थी। पंजाब उस वक्त भी ग्रेजुएट पैदा कर रहा था मास्टर्स डिग्रीज होल्डर पैदा कर रहा था। सेकेंडली बात अच्छा अब आ जाते हैं आर्मी की तरफ। ये आर्मी जो है जनरल असलम बेग कौन था पंजाब से था
सर मैं तो अभी ये कह के परवेज मुशर्रफ कौन था
परवेज मुशर्रफ जनरल शमीम अहमद खान
जनरल काकड़ कौन था बलूची था
नहीं मैंने पर्सनली देखा आपने अक्सर लोगों ने वो देखे भी होंगे उनके जो है व्हाट इस सोशल मीडिया पे खबरों के नाम लिखे शमीम अहमद खान आठ भाई थे आठ के आठ कोई आर्मी का कोई एयर कमोडोर बना था इसमें एयरफोर्स में एयर कमोडोर हुआ और मेजॉरिटी जो थी इनके चार पांच भाई जनरल रिटायर हुए थे सारे के सारे महाजिर थे। अब ये कहते हैं ना कि ये महाजिरों को तो इनका पूरा मुकाम नहीं आर्मी में इनको जगह ही नहीं मिलती जहां देखा पंजाब की आर्मी पहुंच जाती भाई पंजाब की आर्मी पता कौन सी पहुंचती है वो सिपाही होते हैं वो नॉन कमीशन ऑफिसर्स होते हैं जिनकी लाशें आ रही है ना वो सिपाहियों की नॉन कमीशन ऑफिसर्स की हो रही है। कोई एक लाश बता दें पिछले एक साल के अंदर कोई कराची में किसी नॉन कमीशन ऑफिसर की लाश गई है जिसमें टेररिज्म के अंदर जिसने अपनी जान दी हो। ये कराची के लोग जो होते हैं वो सिर्फ ऑफिसर्स बनने के लिए आते हैं और आप देखेंगे जो कम एजुकेटेड लोग हैं वो कहेंगे हम पान बीड़ी का ठेला लगा लेंगे अरे भाई हम तो यहां से 10,000 कमाते हैं फौज में जाकर हमने क्यों रगड़ा करना है दिस इज अ फैक्ट। ये मैं बात
पहुंच चुकी है यहाँ पे मैं एक बात आपने सारे फैक्ट्स को उजागर किया इसमें कतन कोई शक नहीं मगर मैंने ये बात जरूर कही कि पंजाब 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 बेसिकली वी आर पाकिस्तानी थोड़ी थोड़ी रिफ्ट हमें कम करनी चाहिए। मैं खुद जैसे आपने भाई साहब ने महाजर का लफ्ज इस्तेमाल किया था मगर पंजाब के जितने लोग थे जब वो लुटपुट के आए थे तो वो पूरी की पूरी फैमिलीज आ गई थी मगर जितने लोग कराची में है ना उनकी आधी फैमिलीज इंडिया में है आधी फैमिलीज यहाँ पे हैं बिकॉज दे केम लेटर ऑन उनमें से कुछ लोग पाकिस्तान की मोहब्बत में पाकिस्तान आ गए थे कुछ वहां पे रह गए थे एवरीबडी पेड द प्राइस मेरा ख्याल है
कोई मोहब्बत में नहीं आया ये अपॉर्चुनिटीज के लिए। देखे कनाडा में दो टाइप के लोग हैं पाकिस्तानी एक है जो आते हैं इमिग्रेंट आते हैं माइग्रेशन लेकर आते हैं और एक आते हैं रेफ्यूजी। रेफ्यूजीज जो होते हैं वो महाजिर होते हैं वो अपने आप को रेफ्यूजी क्लेम करते हैं हम अगर वापस गए तो हम मारे जाएंगे तो ये फर्क है। ये लोग माइग्रेशन के साथ इमिग्रेंट आए थे नॉट अ महाजिर। इमिग्रेंट दो भाई हैं एक भाई जब अपॉर्चुनिटी भाई मैं तो पाकिस्तान जा रहा हूँ भाई वहां पे मैं कस्टम में नौकरी कर लूंगा तुम यहाँ पे तगड़े खाते रहना कलर भर भर मेरे कई दोस्त मैं जानने वाला हूँ
बहुत
कहते हमारे अब्बा तो
बहुत शुक्रिया मगर मेरा ख्याल है कि अगर हम इन फैक्ट्स की तरफ वो कहते हैं ना बाजू का जख्मों को कुरेदने से जख्म और गहरे हुआ करते हैं। आई थिंक हर इंसान वो एक लफ्ज है ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन वहां पे आते हुए हमें हमने अपने उस वतन के साथ जो ज्यादती की है हमें उसका ख्याल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका लास्ट
छोटी सी बात है एक छोटी सी बात है कि पंजाब का महाजिर तो है ना पूरे पंजाब में गांव गांव हर जगह फैला मैं हम खुद महाजिर आए थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिश्तेदारों में एमपीएस भी बने चेयरमैन काउंसिल यूनियन काउंसिल भी बने। इन लोगों ने क्या किया इन लोगों ने सिर्फ कराची पे फोकस किया भाई सिंध के अंदर आप आते तो आपको अपना सिंधी बनवाते हैं ना आपने लैंग्वेज नहीं सीखी हम लोगों ने हमारे आने वालों ने यहाँ पे लैंग्वेज सीखी है वो आपस में मेरे तो कजन है उनको तो अपनी लैंग्वेज नहीं आती उसके बाद लोकल लैंग्वेज के। थैंक यू
बहुत शुक्रिया बट आई नो वेरी मेनी कराची के महाजिर जो कि उनको मैंने मुल्तान में देखा था वो मुल्तान की जुबान में बात करते थे पंजाबी भी बोल लेते हैं मगर मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे को ये जो दरमियान के डिफरेंसेस हैं इनको खत्म करके बहसियत पाकिस्तानी होकर सोचना पड़ेगा वरना ये ऊंट किसी करवट बैठेगा नहीं। एक बंदे का वो एक हमारे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने आज मुझे इम्तियाज गुल के बारे में ही लिख दिया। मैं भी आपके साथ में ये लास्ट कॉल लेती हूँ, मगर उनका मैं मैसेज आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूंगी। एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, रेनाउंड जर्नलिस्ट हैं यहाँ के, उन्होंने मुझे इम्तियाज गुल साहब के बारे में जो मैसेज लिखा है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि उन्होंने इम्तियाज गुल साहब ने इमरान खान के बारे में बात की थी, तो उनको शायद वो नागवार गुजरी है। उन्होंने कहा कि इनको फिर किसी पार्टी का जिक्र, क्योंकि मैं और आप पाकिस्तान में सेंसरशिप के इतने कायल हो गए हैं कि हम किसी दूसरे का नाम सुनना नहीं चाहते, हालांकि उस इक्वेशन में से आप उनको निकाल नहीं सकते। जी अस्सलाम वालेकुम। जी
अस्सलाम वालेकुम।
जी आप बात कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइए।
इकबाल नाम है। अभी ये बात एक हो रही थी कि मतलब जो है वो इंडिया से तहजीब लेके आए थे, तालीम लेके आए थे, तो बात ये है कि पंजाब से चार लोगों ने जो है ना नोबेल प्राइज हासिल किया है। चार लोगों ने नोबेल प्राइज हासिल किया है, मुझे बताएं ये बाकी कौन सा ऐसा है जिसने है नोबेल प्राइज हासिल किया हो। नाम चाहिए देख ले, उसमें से मतलब नॉन मुस्लिम भी है, मुस्लिम भी है, जो कि अहमदी भी जो एक चार नोबेल प्राइज होल्डर हैं साइंस के फील्ड के, मुझे बताएं बाकी इंडिया के अंदर कहां से, ये यूपी या बिहार से कहां से किन लोगों ने ये जो है नोबेल प्राइज लिए थे। साउथ इंडिया के अलावा बहुत कम ही जो है ना लिए गए हैं। और वो अभी जो इन साहब ने तो मेरी जुबान बंद कर दी, क्योंकि उन्होंने सब कुछ बोल दिया। मेरे वालिद साहब 3 दिन तक लाशों के अंदर पड़े रहे थे, 3 दिन तक के बाद सारी फैमिली आ गई कि वो मर गया। मेरे वालिद साहब के जिसमें उस वक्त ही बुलेट्स के छोटे छोटे से निशान पे मरने तक, वो सब लोग जो ईस्ट पंजाब से आए हैं वो सब खाते पीते लोग थे, वो कोई कंगले नीचे पढ़े लिखे भी होते थे, जमींदार भी होते थे। फिर आपने एक बात की कि पंजाब के अंदर चौधरी होता है, या चौधरी क्या होता है, पंजाब के 3 बुनियादी इस वक्त आप पंजाब में रहते हैं फिर भी आपको इसका अंदाजा नहीं कि एक तरफ तो ये हमारा जो ये साउथ पंजाब है इसके अंदर जो है ये जो सैयद है कुरैशी है इनका एक बहुत बड़ा होल्ड है।
रिलीजियस टोला
नहीं, नहीं ये रिलीजियस एक ग्रुप है। फिर उसके बाद आपका आ गया ये जो पिंडी है, ये जो पिंडी है इसके अंदर सारे, जब ये इस्लामाबाद बन गया इसके अंदर सारे केपीके के लोग आके बसे हुए हैं। उन लोगों ने सिर्फ अपनी लैंग्वेज चेंज कर ली है, या इस गिर्द के जितने लोग हैं जो पोटोहारी या दूसरी जुबानें बोलते हैं इनको वगैरह बोलते हैं, ये पंजाबी थोड़ी है। मुझे अब इस तरह से ये पंजाब के तो सिर्फ 2-3 अब सारे पंजाब के, पंजाब का तो पानी ये पाकिस्तान की तरह जो जमीनों को खराब कर रहा है। और पंजाब जो कराची की जो फोर्ट बनाई गई थी अंग्रेजों ने, वो तो पंजाब की जो के आउटपुट थी, जो फसलें थी उनको भेजने के लिए मतलब जो था उन्होंने ये फोर्ट क्रिएट की थी। और ये जो सारी जमीनें सिंध की, जो बंजर जमीनें थी, जो सिंध के अंदर सहरा थे, इनको अंग्रेजों ने क्या किसको आके बताया, ये आपके आराइयों को आके बताया था ना, ये भट्टियों को, भाटियों को, भुट्टोस को, इनको आके बताया था ना, ये तो मतलब बंजर जमीनें थी। ये तो पंजाबियों की सबसे बड़ी हिमाकत, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने पाकिस्तान बनने के अंदर अपना वोट डाल दिया। 1935 के जो इलेक्शन थे उसके अंदर कोई मुस्लिम लीग को कामयाबी नहीं हासिल हुई थी। 1940 के अंदर जब इन्होंने यहाँ पे लाहौर में जलसा किया और ये सारा वो मतलब इस्तेमाल किया पंजाब को, पंजाब की तो हुकूमत थी, पंजाब तो वही सूबा था जिसकी